अध्याय 21 यूसुफ और उसके भाई। ये अध्याय उत्पत्ति 41 आयत 54 से 56 42 50 पर आधारित है। उपजाऊ वर्षों के प्रारंभ से ही आने वाले अकाल के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। यूसुफ के निर्देशन में समूचे मिस्र में सभी मुख्य स्थानों पर विशाल भंडार गृहों का निर्माण किया गया और प्रत्याशित उपज के अतिरिक्त भाग के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। यही विधि समृद्धि के 7 वर्षों के दौरान कायम रही, जब तक कि भंडार में बेहिसाब अनाज की मात्रा इकट्ठी न हो गई। अब यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी और उसने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्रियों के हाथों अन्न बेचने लगा। अकाल कनान देश तक भी फैल गया और देश के जिस भाग में याकूब रहता था वहां उसका प्रकोप अधिक था। मिस्र के राजा द्वारा अन्न के प्रयोजन के बारे में सुनकर याकूब के 10 पुत्र अन्न मोल लेने के लिए वहां गए। उनके आगमन पर उन्हें राजा के प्रतिनिधि के पास भेजा गया और वे राज्य के शासक के सम्मुख प्रस्तुत होने को आए और उन्होंने भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना। उसका इब्री नाम राजा द्वारा दिए गए नाम से बदल दिया गया था और प्रधानमंत्री और उनके द्वारा इश्माएलियों को बेचे गए किशोर में नहीं के बराबर समानता थी। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखा, उसे अपने स्वप्न का स्मरण हुआ और बीते समय के दृश्य स्पष्ट रूप से उसके सामने आ खड़े हुए। दल का पैनी दृष्टि से निरीक्षण करते हुए उसे ज्ञात हुआ कि उनमें बिन्यामीन नहीं था। क्या वह भी उन दुष्ट मनुष्यों की कपटी निर्दयता का शिकार हो गया था? उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने कठोरतापूर्वक कहा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। वह जानना चाहता था कि क्या उनमें अभी भी वही अहंकारी भावना थी जो उनमें उसके साथ होने के समय थी, और वह उनसे उनके घर के बारे में जानकारी निकालना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उनके कथन कितने छल से भरे हो सकते थे। उसने आरोप को दोहराया और उन्होंने उत्तर दिया, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। उनकी कहानी की सच्चाई पर संदेह करने का और उन्हें अभी भी भेदिए समझने का ढोंग करते हुए राज्यपाल ने घोषणा की कि वह उन्हें इस रीति से परखेगा कि जब तक उनमें से एक जाकर अपने छोटे भाई को नहीं लाएगा, तब तक वे मिस्र देश में रहेंगे। यदि वे इस बात से सहमत न होंगे तो उन्हें भेदिए ही माना जाएगा। लेकिन याकूब के पुत्र इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो समय इसके पालन में लगता उसमें उनके परिवार खाने के लिए परेशान होते। उनमें से कौन अपने भाइयों को कैद खाने में अकेले यात्रा करने का जोखिम उठाता? इन परिस्थितियों में वो अपने पिता से कैसे मिल सकता था? ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा या दास बना दिया जाएगा, और यदि बिन्यामीन को लाया भी जाए तो उसका भी वही हाल होगा। उन्होंने अपने पिता को, उसके अकेले बचे हुए पुत्र को भी खो देने के अतिरिक्त दुख से बचाने के लिए निर्णय किया कि वे एक साथ वही रहेंगे और कष्ट उठाएंगे। इस कारण उन्हें कारावास में डाल दिया गया, जहां वे 3 दिनों तक रहे। उन वर्षों के दौरान जब से यूसुफ अपने भाइयों से अलग हुआ था, याकूब के इन पुत्रों के चरित्र में बदलाव आया था। वे द्वेषपूर्ण, उद्यमी, कपटी, निर्दयी व प्रतिशोधी हुआ करते थे, लेकिन अब जब वे विपत्ति द्वारा परखे गए तो वे निस्वार्थी, एक दूसरे के प्रति सच्चे, पितृभक्त और स्वयं अधेड़ उम्र पुरुष अपने पिता के अधीन पाए गए।
मिस्री कारावास में 3 दिन अत्यंत पीड़ाजनक थे, जब भाइयों ने अपने पिछले पापों पर विचार किया। जब तक बिन्यामीन को लाया नहीं जाता, उनके भेदिए होने की प्रतीति निर्विवाद लग रही थी, और ये आशा बिल्कुल नहीं थी कि उनका पिता बिन्यामीन की अनुपस्थिति को स्वीकार करेगा। 3रे दिन यूसुफ ने भाइयों को बुलवाया। वह उन्हें और रोक रखने का दुस्साहस न कर सका। उसका पिता और उसके साथ रह रहे परिवार खाने को तरस रहे होंगे। एक काम करो,
तब जीवित रहोगे, उसने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घरवालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। हालांकि पिता द्वारा बिन्यामीन को उनके साथ ले जाने की अनुमति की कम ही आशा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यूसुफ ने उनके साथ एक दुभाषिये के माध्यम से संपर्क किया था और इस बात से अनजान कि राज्यपाल उन्हें समझ सकता था, उसकी उपस्थिति में वे एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते थे। यूसुफ के साथ किए गए व्यवहार के संदर्भ में उन्होंने स्वयं पर आरोप लगाया, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में हैं। रूबेन, जिसने दोतान में उसे छुड़ाने की योजना तैयार की थी, ने कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। ये सुनकर यूसुफ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सका और वो बाहर गया और बहुत रोया। फिर उनके पास लौटकर उसने शिमोन को बंदी बनाकर बंदीगृह में डालने की आज्ञा दी। उनके भाई के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार में शिमोन बहकाने वाला और मुख्य करता था और इसी कारण यूसुफ द्वारा उसे चुना गया। अपने भाइयों को जाने की अनुमति देने से पहले यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाएं, प्रत्येक के बोरे में चुपके से उसके रुपए भी रख दिए जाएं, पशुओं के लिए चारा भी दिया गया। जब एक ने अपने बोरे को खोला तो उसमें उसका चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर वह आश्चर्यचकित हुआ। जब उसने ये तथ्य दूसरों को बताया तो वे चिंतित हुए और उलझन में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया? क्या वे परमेश्वर की ओर से भलाई का प्रतीक माने? क्या उसने उनके पापों के लिए उन्हें दंडित करने और उन्हें और अधिक कष्टों में धकेलने के लिए ऐसा होने दिया? उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर ने उनके पापों को देख लिया था और अब वह उन्हें दंडित कर रहा था। याकूब उत्सुकता से अपने पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था और उनके आगमन पर पूरे तंबूवासियों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने अपने पिता को वो सब बताया जो उनके साथ हुआ था। प्रत्येक हृदय भय और आशंका से भर गया। मिस्री राज्यपाल का आचरण किसी षड्यंत्र का संकेत दे रहा था और जब उन्होंने अपने बोरे खोले और प्रत्येक के बोरे में स्वामी की धनराशि पाई गई तो उनके भय की पुष्टि हो गई। दुखी होकर वृद्ध पिता ने कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने उत्तर दिया, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। जल्दबाजी में कहे इन शब्दों ने याकूब के मन को शांत नहीं किया। उसने उत्तर दिया, मेरे पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा।
लेकिन अकाल समाप्त नहीं हुआ और समय के साथ मिस्र से लाया गया अन्न का भंडार लगभग समाप्त हो गया।
याकूब के पुत्र भली भांति जानते थे कि बिन्यामीन के बिना मिस्र को लौटना व्यर्थ था। उन्हें अपने पिता के संकल्प को बदलने की कम ही आशा थी और चुपचाप उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। अकाल की छाया गहराती गई। डेरे में सबसे व्याकुल मुखाकृतियों में बूढ़े याकूब ने उनके आवश्यकता को पढ़ लिया और अंततः वो बोला, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आ पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे साथ भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे
तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई साथ न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। पिता के संकल्प को डगमगाते देख उसने कहा, उस लड़के को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। और उसने अपने भाई का जामिन होना स्वीकार किया और बिन्यामीन को पिता के पास लौटाकर न लाने की सूरत में स्वयं को सर्वदा के लिए अपराधी मानना स्वीकार किया। याकूब अब अपनी सहमति को और न रोक पाया और उसने अपने पुत्रों को यात्रा की तैयारियां करने को कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि अधिकारी के लिए ऐसी उत्तम वस्तुओं की भेंट ले जाएं जो वो अकाल पीड़ित देश दे सकता था, जैसे कि थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम और दुगनी धनराशि भी ले जाएं। उसने ये भी कहा, अपने भाई को भी साथ लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। जब उसके पुत्र अपनी अनिश्चित यात्रा के लिए निकलने वाले थे, वृद्ध पिता खड़ा हुआ और स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर उसने प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर, उस पुरुष को तुम पर दया कराए, जिससे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं शोक संतप्त हुआ तो होने दे। वे फिर मिस्र को गए और स्वयं को यूसुफ के सम्मुख प्रस्तुत किया। जब उसकी दृष्टि बिन्यामीन पर पड़ी, जो उसकी अपनी मां से पैदा हुआ था, वो भावुक हो उठा। उसने हालांकि अपनी भावनाओं को छुपाए रखा, लेकिन आज्ञा दी कि उन्हें उसके घर ले जाया जाए और उसके उनके साथ भोजन करने की तैयारी की जाए। राज्यपाल के महल में पहुंचाए जाने पर सब भाई डर गए कि कहीं उनके बोरी में मिली धनराशि का हिसाब देने तो नहीं बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि धनराशि को जानबूझकर वहां रखा गया था ताकि उसे उन्हें दास बनाने का मौका मिल सके। इस संकट के समय उन्होंने घर के अधिकारी से परामर्श लिया, ये बताते हुए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने मिस्र का दौरान किया था, और अपने निर्दोष होने के प्रमाण के रूप में उन्होंने उसे सूचित किया कि वो बोरी में मिली धनराशि को वापस ले आए थे। और उन्होंने ये भी कहा, हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। अधिकारी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था। वे चिंतामुक्त हो गए, और जब शिमोन कारावास से छूटकर उनसे आ मिला तो उन्हें लगा कि परमेश्वर वाकई उन पर मेहरबान है। जब राज्यपाल उनसे दोबारा मिला तो उन्होंने अपनी भेंट उसे दी और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। फिर से उसे उसके स्वप्नों का स्मरण हुआ और अपने अतिथियों का अभिवादन करने के पश्चात उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा वो बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? फिर से दंडवत करते हुए उन्होंने कहा, हां, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। 58। फिर उसकी दृष्टि अपने सगे भाई बिन्यामीन पर पड़ी और उसने पूछा, क्या तुम्हारा ये छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। लेकिन स्नेहशीलता की भावनाओं में बहकर वो और कुछ न कह सका। वो तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा।
फिर स्वयं पर नियंत्रण पाकर वह लौटा और सब भोजन करने बैठे।
जाति के नियमों के अनुसार मिस्रियों का अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन करना निषिद्ध था। याकूब के पुत्रों के लिए अलग खाना परोसा गया और राज्यपाल ने अपने ऊंचे पद के अनुसार अलग से भोजन किया और मिस्रियों को भी अलग से भोजन परोसा गया। जब सब भाई बैठ गए तो उन्होंने विस्मय से देखा कि वे अपनी अपनी आयु के अनुसार उचित क्रम के अनुसार बैठाए गए थे। यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठाकर उनके पास भेजने लगा, लेकिन बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। बिन्यामीन पर विशेष कृपा दृष्टि दिखाकर यूसुफ जानना चाहता था कि कहीं उसके छोटे भाई को भी ईर्ष्या और घृणा से तो नहीं देखा जाता था जैसे कि उसके साथ होता था। अभी भी ये सोच कि यूसुफ उनकी भाषा नहीं समझता था, सभी भाई एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर रहे थे और इस प्रकार उनकी वास्तविक भावनाओं को जानने का उसके पास अच्छा अवसर था। लेकिन फिर भी वह उन्हें और परखना चाहता था,
और उनके निकास से पहले उसने आज्ञा दी कि उसका चांदी का निजी प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में छिपा दिया जाए। प्रसन्नता पूर्वक वे वापसी के लिए निकले। शिमोन और बिन्यामीन उनके साथ थे। उनके जानवर अन्न से लदे हुए थे और सबको लगा कि जो संकट उन्हें घेरे हुए प्रतीत हो रहे थे अब टल गए थे। लेकिन वे अभी नगर की बाहरी सीमा पर ही पहुंचे थे कि राज्यपाल के अधिकारी ने उन्हें आ पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या ये वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने ये जो किया है बुरा किया। माना जाता था कि वह प्याला उसके अंदर डाले गए किसी भी विषैली वस्तु का पता लगाने में सक्षम था। उन दिनों विषपान द्वारा हत्या के प्रति सुरक्षा के तौर पर ऐसे प्याले का बहुत महत्व था। अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप का उत्तर देते हुए यात्रियों ने कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे हैं। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था जब हमने उनको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास से यह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। अधिकारी ने कहा, तुम्हारा ही कहना सही। जिसके पास यह निकले वह मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। ढूंढने का काम तत्काल शुरू किया गया। वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे और अधिकारी ने प्रत्येक का निरीक्षण किया। उसने रूबेन से शुरू किया और क्रमानुसार बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। अत्यंत दयनीयता के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और धीरे धीरे नगर को लौट गए। उन्हीं की प्रतिज्ञा के अनुसार बिन्यामीन के लिए दासत्व के जीवन का दंड मिला। वे अधिकारी के पीछे पीछे महल पहुंचे और राज्यपाल को वहां पाकर उसको फिर से दंडवत किया। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया? क्या तुम न जानते थे कि मुझ सा मनुष्य भविष्यद्वाणी कर सकता है? यूसुफ उनसे उनके द्वारा किए गए पाप को स्वीकार करवाना चाहता था। उसने कभी भी भविष्यद्वाणी करने की योग्यता का दावा नहीं किया था, लेकिन वह उन्हें आश्वस्त कराने को सहमत था कि वह उनके जीवन के रहस्यों को भांप सकता था। यहूदा ने उत्तर दिया, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। यूसुफ ने उत्तर दिया, ऐसा करने से परमेश्वर मुझे रोके, लेकिन जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल चले जाओ। तब अत्यंत खेदित यहूदा ने राज्यपाल के पास जाकर कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर न भरके, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। संवेदनशील वाक्पटुता के शब्दों में उसने यूसुफ को खोने के दुख और बिन्यामीन को उनके साथ मिस्र आने देने में संकोच का वर्णन किया। बिन्यामीन इसलिए क्योंकि वो उसकी मां राहेल का अकेला जीवित बेटा था, जिसे याकूब बहुत प्रेम करता था। उसने कहा, इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का साथ न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, ये देखकर कि लड़का नहीं है, वो तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहां ये कहकर इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और ये लड़का अपने भाइयों के साथ जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना साथ रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा? ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े। यूसुफ संतुष्ट हुआ। उसने अपने भाइयों में सच्चे प्रायश्चित के फल को देख लिया था। यहूदा के नेक प्रस्ताव को सुनकर उसने आज्ञा दी, उसके आसपास के सभी लोग बाहर चले जाएं। और फिर वो चिल्ला चिल्लाकर रोते हुए बोला, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? उसके भाई निस्तब्ध खड़े रहे, डर और आश्चर्य से निशब्द। उनका भाई यूसुफ, जिससे वे ईर्ष्या करते थे और जिसे वे मार देना चाहते थे और जिसे उन्होंने आखिर में दास की तरह बेच दिया, मिस्र का शासक, उनका संपूर्ण दुर्व्यवहार उनके सामने आ गया। उन्हें स्मरण हुआ कि किस प्रकार उन्होंने उसके स्वप्नों से घृणा की और उनके पूर्ण न होने देने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उन स्वप्नों के पूरा होने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और अब जब वे पूर्णतया उसके वश में थे, वो निःसंदेह उसके द्वारा उठाए गए कष्टों का प्रतिशोध लेगा। उनकी उलझन को देखकर वो नम्रतापूर्वक बोला, मेरे निकट आओ। जब वे ये सुनकर निकट आए तो उसने कहा, मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ये आभास करते हुए कि उसके प्रति निष्ठुरता के लिए वे पर्याप्त कष्ट उठा चुके थे, उसने सज्जनता से उन्हें भयमुक्त करने, उनके आत्म तिरस्कार की कड़वाहट को कम करने के बारे में सोचा। यूसुफ ने कहा, अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझे यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे ग्रीस का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना, वरन जितने तेरे हैं, वे भूखे मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वो यूसुफ है। तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। यही नहीं, वो अपने सभी भाइयों को भी चूम कर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। उन्होंने दीनतापूर्वक अपने पापों का अंगीकार किया और उससे क्षमा याचना की। उन्होंने लंबे समय तक पछतावा और व्याकुलता को सहन किया था, और अब उसके जीवित पाए जाने पर उन्होंने आनंद मनाया।
जो घटित हुआ उसका समाचार फिरौन तक शीघ्र ही पहुंच गया, जिसने यूसुफ को कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से यूसुफ के अपने परिवार को आमंत्रित करने को स्वीकार किया, और वो बोला, मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा हुआ। भाइयों को बहुतायत में सामग्री, गाड़ियां और प्रत्येक उस वस्तु के साथ जो उनके नौकर चाकर और परिवारों को मिस्र लाने के लिए आवश्यक थी, कनान भेजा गया। बिन्यामीन को यूसुफ ने अपने अन्य भाइयों से अधिक मूल्यवान उपहार दिए। फिर उस डर से कि घर जाते समय उनमें मतभेद न उत्पन्न हो जाए, उसने उनके उसे छोड़कर जाने से पहले उन्हें आज्ञा दी, मार्ग में कहीं झगड़ा नहीं करना। याकूब के पुत्र शुभ समाचार के साथ अपने पिता के पास पहुंचे। याकूब अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वृद्ध पुरुष अपने आपे में नहीं रहा। जो उसने सुना उस पर वो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन जब उसने गाड़ियों की कतार को और भार से लदे जानवरों को देखा और देखा कि बिन्यामीन भी एक बार फिर उसके साथ था, उसे विश्वास हो गया और अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वो बोला, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसे देखूंगा। दसों भाइयों के लिए उन्हें दीन कर देने वाला एक और कार्य था। उन्होंने उनकी और उनके पिता के जीवन को इतने वर्षों से कटु बनाने वाली उनकी निर्दयता और छल का अपने पिता के सम्मुख अंगीकार किया। याकूब ने कभी नहीं सोचा था कि वे इतना घोर पाप भी कर सकते हैं, लेकिन उसने देखा कि भले के लिए सब कुछ भुला दिया गया था और उसने अपने भटके हुए बच्चों को क्षमा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता और उसके पुत्र अपने परिवारों, भेड़ बकरियों व गाय भैंसों व कई सेवकों सहित जल्द ही मिस्र की ओर चले। हृदय में हर्ष के साथ वे अपनी यात्रा करते रहे और बेशबा पहुंचने पर कुलपिता ने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई और प्रभु से विनती की कि वो उनके साथ जाने का आश्वासन दे। जब परमेश्वर ने उसे रात के दर्शन में कहा, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये आश्वासन महत्वपूर्ण था। अब्राहम को नक्षत्रों से असंख्य वंशजों की प्रतिज्ञा दी गई थी, लेकिन अभी तक चुने हुए लोगों में कुछ ही वृद्धि हुई थी और कनान देश में ऐसी जाति जिसकी भविष्यद्वाणी की गई थी के विकास के लिए कोई संभावना नहीं थी। वो शक्तिशाली मूर्ति पूजक कबीलों के अधीन था जो चार पीढ़ियों तक उन्हीं का रहना था। यदि इसराइल के वंशजों को अपनी जनसंख्या में वृद्धि करनी थी तो ये अनिवार्य था कि या तो वे वहां के निवासियों को खदेड़ दें या उन लोगों के बीच स्वयं को तितर बितर कर दें। ईश्वरीय प्रबंध के अनुसार पहला विकल्प वे नहीं ले सकते थे, और यदि वे कनानियों के साथ मेल जोल बढ़ाते तो उनको मूर्ति पूजा के लिए बहकाए जाने का खतरा था। फिर भी मिस्र ने पवित्र योजना के परिपूर्ण होने के लिए आवश्यक परिस्थिति प्रदान की। देश का वो भाग जो जल संपन्न और उपजाऊ था उनके लिए खुला था और उनकी शीघ्र वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर रहा था। मिस्र के लोग चरवाहों से घृणा करते थे, इस कारण उनके व्यवसाय के कारण उत्पन्न होने वाला बैर भाव उन्हें एक विशिष्ट और पृथक जाति होने में सहायक हुआ और मिस्र की मूर्ति पूजा में सम्मिलित होने से बाहर रखने में सहायक हुआ। मिस्र पहुंचकर ये समूह सीधे गोशेन देश को गया। तब यूसुफ राजसी अनुचर वर्ग के साथ भव्य रथ पर सवार होकर आया। वो अपने चारों ओर वैभव और अपने पद की मर्यादा दोनों को भूल गया। उसके मन में एक ही विचार था, हृदय को एक ही तृष्णा व्याकुल कर रही थी। यात्रियों को आते देख जिस प्रेम की तृष्णा को इतने वर्षों तक दबाकर रखा गया था, अब नियंत्रण में ना रह सकी। वो अपने रथ से कूदा और अपने पिता का स्वागत करने आगे बढ़ा। वो उससे भेंट करके बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया।
यूसुफ अपने भाइयों में से पांच को फिरौन के सम्मुख ले जाने के लिए और उससे अपने भावी घर के लिए भूमि का दान प्राप्त करने गया। फिरौन अपने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने को उन्हें सम्मानजनक पदों पर नियुक्त कर सकता था, लेकिन यूसुफ यहोवा की आराधना में सच्चा अपने भाइयों को एक मूर्ति पूजक दरबार के प्रलोभनों से बचाना चाहता था। इसलिए उसने उन्हें सलाह दी कि फिरौन द्वारा पूछे जाने पर वे उसे स्पष्ट रूप से अपना व्यवसाय बता दें। याकूब के पुत्रों ने उसका कहना माना और बड़ी सावधानी से ये भी बता दिया कि वे वहां स्थायी निवासी बनने नहीं बल्कि कुछ समय के लिए निवास करने आए थे, और इस तरह उन्होंने अपनी इच्छानुसार वहां से चले जाने के अधिकार को सुरक्षित रखा। फिरौन ने उनके लिए एक घर नियुक्त किया जो गोशेन राज्य में सबसे उत्तम था। अपने आगमन के कुछ ही समय पश्चात याकूब अपने पिता को भी फिरौन के सम्मुख लाया। कुल पिता राजसी दरबारों में अपरिचित था, लेकिन प्रकृति के उत्कृष्ट दृश्यों के बीच उसने एक महानतम सम्राट के साथ संगति की थी, और अब साभिप्राय वरिष्ठता में उसने हाथ उठाकर फिरौन को आशीर्वाद दिया। यूसुफ को अपने पहले अभिवादन में याकूब ने ऐसे बात की थी मानो दुख और चिंता के आनंदमयी अंत में वो मरने को तैयार था, लेकिन गोशेन के शांतिपूर्ण एकांत स्थान में उसे 17 वर्ष और मिलने थे। ये वर्ष खुशहाली के संदर्भ में पिछले वर्षों के विपरीत थे। उसने अपने पुत्रों में सच्चे प्रायश्चित का प्रमाण देखा था। उसने अपने परिवार को एक महान जाति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों से घिरा हुआ देखा और उसके विश्वास का कनान में उनकी भावी गृहस्थी की असंदिग्ध प्रतिज्ञा का बोध हुआ। वो प्रेम के प्रतीकों से घिरा हुआ था और अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र की संगति में प्रसन्न वो शांतिपूर्वक अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब याकूब को लगा कि उसकी मृत्यु का समय निकट है तो उसने यूसुफ को बुलवाया। कनान पर अधिकार से संबंधित परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे हुए वो बोला, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे मिस्र में मिट्टी न देना। जब मैं अपने बाप दादाओं के साथ सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखना। यूसुफ ने वैसा ही करने का वचन दिया, लेकिन याकूब को संतुष्टि न हुई। उसने यूसुफ को शपथ लेने को बाध्य किया कि वो उसे उसके बाप दादों के पास मकपेला की गुफा में रखेगा। एक और आवश्यक कार्य ध्यान देने योग्य था। यूसुफ के पुत्रों को इसराइल की संतानों में औपचारिक ढंग से सम्मिलित करना था। पिता के साथ अपने अंतिम साक्षात्कार के समय यूसुफ अपने साथ एप्रेम और मनश्शे को लेकर आया। इन नौजवानों को उनकी माता के द्वारा मिस्री पुरोहिताई के सर्वश्रेष्ठ वर्ग से जोड़ा गया और उनके पिता की प्रतिष्ठा ने उनके लिए गौरव और धन संपत्ति के अवसर प्रदान किए, बशर्त वे मिस्रियों के साथ मेलजोल करने की तत्पर होते। लेकिन यूसुफ की इच्छा थी कि वे अपने ही लोगों के साथ एक हों। तुच्छ चरवाहों के कबीलों के बीच स्थान पाने के लिए जिनके सुपुर्द परमेश्वर की भविष्यद्वाणी की गई थी, उसने वाचा की प्रतिज्ञा में अपना विश्वास प्रकट किया। वह अपने पुत्रों की ओर से मिस्र के दरबार द्वारा प्रस्तावित सम्मानों का परित्याग कर दिया। याकूब ने कहा, तेरे दोनों पुत्र एप्रेम और मनश्शे, जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। वे उसी की संतान के तौर पर गोद लिए जाने थे, जो आगे जाकर अलग अलग कुटुंबों के मुखिया बने। इस तरह जन्मसिद्ध अधिकार का एक विशेषाधिकार, जिसे रूबेन ने खो दिया था, यूसुफ को मिलना था। इसराइल में दुगना भाग।
याकूब की दृष्टि आयु के साथ धुंधला गई थी और उसे नौजवानों की उपस्थिति का ध्यान नहीं था, लेकिन अब उनकी आकृति के प्रारूप का अनुमान लगाकर उसने पूछा, ये कौन है? बताए जाने पर उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। जब वे पास आए तो कुल पिता ने उन्हें चूम कर गले लगा लिया और उनके सिरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे। अब आत्मा निर्भरता की कोई भावना नहीं थी और ना ही निपुणता या मानवीय क्षमता पर विश्वास। परमेश्वर उसका सहायक व रक्षक रहा था। बीते समय के बुरे दिनों की कोई शिकायत नहीं थी। बीते समय के संकट व दुख अब उसके जैसा विषय न थे। उसे केवल उसकी करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता का स्मरण था, जो संपूर्ण तीर्थयात्रा में उसके साथ था। आशीर्वाद देने के बाद याकूब ने अपने पुत्र को आश्वासन दिया और दुख और दासत्व की लंबी अवधि के दौरान आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की ये गवाही छोड़ी, देख, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। अंत में याकूब के सब पुत्र उसकी मृत्युशैया के चारों ओर इकट्ठे हुए। याकूब ने उन्हें बुलाकर कहा, इकट्ठे हो जाओ, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इसराइल की ओर कान लगाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। प्रायः और उत्सुकता से उसने उनके भविष्य के बारे में सोचा था और अलग अलग कुटुंबों के इतिहास का चित्रांकन करने का प्रयत्न किया था। अब जब उसके बच्चे उसके आखिरी आशीर्वाद को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रेरणा का आत्मा उस पर आया
और उसके सामने भविष्यद्वक्ता दर्शन में उसके वंशजों का भविष्य खोला गया। एक के बाद एक उसके पुत्रों के नाम बताए गए, प्रत्येक के चरित्र का वर्णन किया गया और कुटुंबों के भावी इतिहास की संक्षेप में भविष्यद्वाणी की गई। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। इस तरह पिता ने चित्रांकित किया कि पहलौठा पुत्र होने के नाते रूबेन का स्थान क्या होता, लेकिन एडार में उसके घोर अपराध ने उसे जन्मसिद्ध अधिकार के आशीर्वाद के लिए अयोग्य ठहराया। याकूब कहता गया, तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। पुरोहिताई लेवी के हिस्से में आई, राज्य और मुक्तिदाता संबंधित प्रतिज्ञा यहूदा के भाग में और मीरास का दो गुना हिस्सा यूसुफ को मिला। रूबेन का कुटुंब इज़राइल में प्रतिष्ठित न हुआ, वह यहूदा, यूसुफ और डान के जितना बहुसंख्य नहीं था और दासत्व के पात्र बनने में प्रथम था। आयु में रूबेन के बाद शिमोन और लेवी थे। शेकेम के वासियों के प्रति निर्दयता में वे साथी थे और यूसुफ का सौदा करने में सबसे अधिक आरोपित थे। उनके संबंध में घोषणा की गई, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। कनान में प्रवेश के ठीक पहले इज़राइल की जनगणना के समय शिमोन का सबसे छोटा कुटुंब था। मूसा ने अपने अंतिम आशीर्वाद में शिमोन का उल्लेख नहीं किया। कनान के निर्धारण में इस कुटुंब के पास यहूदा के भूभाग का छोटा सा हिस्सा था और जो परिवार बाद में शक्तिशाली बने उन्होंने अलग अलग बस्तियां बनाई और पवित्र देश की सीमा के बाहरी क्षेत्र में बस गए। लेवी को भी राज्य के अलग अलग भागों में तितर बितर 48 नगरों को छोड़ और कोई धरोहर नहीं मिली, लेकिन दूसरे कुटुंबों द्वारा स्वधर्म त्याग के समय लेवियों की यहोवा के प्रति निष्ठा ने उन्हें हैकल के पवित्र विधि के लिए नियुक्त करवाया और इस तरह प्रकोप आशीर्वाद में बदल गया। जन्मसिद्ध अधिकार की सर्वश्रेष्ठ आशीष यहूदा को दे दी गई। उस नाम का महत्व जिसका अभिप्राय प्रशंसा है इस जाति के भविष्य सूचक इतिहास में ज्ञात होता है।
हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा जब तक शीलो न आए। यहूदा से राजदंड न छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जंगल का राजा सिंह इस कुटुंब का उचित प्रतीक है जिसमें से दाऊद आया और दाऊद का पुत्र शीलो यहूदा के कुटुंब का सिंह था, जिसके आगे सभी राज्य दंडवत करेंगे और सब जातियां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। अपने अधिकतर बच्चों के लिए याकूब ने एक समृद्ध भविष्य की भविष्यद्वाणी की। आखिरकार यूसुफ के नाम पर आकर पिता का हृदय उमड़ पड़ा जब उसने यूसुफ के सिर पर, जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, आशीर्वाद दिया। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो मुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर, जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फले पलेंगे। याकूब सर्वदा से ही प्रेम रखने वाला पुरुष था। उसका अपने पुत्रों के लिए प्रेम गहरा व विनम्र था और उसके मरने के समय की साक्षी एक पक्षीयता या अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने सबको क्षमा कर दिया था
और अंत तक सबसे प्रेम करता रहा। उसकी पैतृक विनम्रता को आशा और प्रोत्साहन के ही शब्दों में अभिव्यक्ति मिलती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और प्रेरणा के प्रभाव में वह सच्चाई बताने के लिए विवश हो गया, हालांकि सच्चाई बहुत कष्टदायक थी। अंतिम आशीर्वाद देने के पश्चात याकूब ने अपने गाड़े जाने के संबंध में आज्ञा को दोहराया, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना, उसी गुफा में जो मकपेला की भूमि में है। वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। इस प्रकार उसके जीवन का अंतिम कार्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास को प्रकट करना था। याकूब के अंतिम वर्ष एक दुखित और थकाने वाले दिन के बाद शांति और विश्राम की संध्या लेकर आए। उसके मार्ग में अंधेरा करने वाले बादल एकत्रित हुए, लेकिन उसके सूर्यास्त का आकाश साफ था और स्वर्ग के प्रकाश ने उसकी अंतिम घड़ियों को प्रकाशमान किया। पवित्र शास्त्र कहता है, सांझ के समय उजियाला होगा। ज़करिया 14:7। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। भजन संहिता 37:37।
याकूब ने पाप किया था और घोर कष्ट उठाया। उस दिन से जब उसके पाप ने उसे उसके पिता के तंबू से भागने पर विवश कर दिया, याकूब ने दुख, चिंता और कठोर परिश्रम के कई वर्ष बिताए थे। एक निराश्रय पलायक अपनी मां से बिछड़कर, जिसे उसने फिर न देखा, 7 वर्षों तक उसके लिए परिश्रम करते हुए, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, केवल छले जाने के लिए 20 वर्षों तक एक कपटी और लालची परिजन की सेवा में कठोर परिश्रम करते हुए, अपनी धन संपत्ति में वृद्धि देखते हुए, अपने पुत्रों को बड़ा होता देखते हुए, लेकिन विभाजित और कलहपूर्ण घराने में आनंद के अभाव में, अपनी पुत्री के साथ हुए कुकर्म से दुखी, उसके भाइयों द्वारा प्रतिशोध से दुखी, राहेल की मृत्यु से दुखी, रूबेन के अस्वाभाविक अपराध से दुखी, यहूदा के पाप से दुखी, यूसुफ के प्रति उसके पुत्रों के निर्दयी धोखे और ईर्ष्या से दुखी, बुराइयों की ये सूची जो हमारे सामने फैली है कितनी विस्तृत और अंधकारमय है। बार बार उसने अपने पहले गलत काम के फल की फसल काटी थी। बार बार उसने अपने पुत्रों को वही गलतियां दोहराते हुए देखा जिनके लिए वह स्वयं दोषी था। लेकिन अनुशासन भले ही कठोर रहा हो, उसने अपना काम संपन्न कर दिया था। ताड़ना भले ही कठोर थी, लेकिन उससे शांति के साथ धर्म का प्रतिफल मिला। इब्रानियों 12:11। प्रेरणा भले मनुष्यों की गलतियों का स्पष्टता से उल्लेख करती है, उनका जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि के द्वारा विशिष्ट थे, यथार्थ में उनकी त्रुटियां उनके सद्गुणों से अधिक संपूर्णता से प्रस्तुत की गई है। यह कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है और इसने नास्तिकों को बाइबल का तिरस्कार करने का अवसर दिया है, लेकिन यह पवित्र शास्त्र में सच्चाई का सबसे ठोस प्रमाण है कि तथ्यों को छिपाया नहीं गया है और न ही उसके मुख्य पात्रों के पापों को दबाया गया है। मनुष्य का मन इतना पक्षपाती है कि मानवीय इतिहास का पूरी तरह से निष्पक्ष होना संभव नहीं है। यदि बाइबल प्रेरणा रहित मनुष्यों द्वारा लिखी गई होती तो निस्संदेह विशिष्ट मनुष्यों के चरित्र को प्रशंसापूर्ण प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता, लेकिन जैसा यथार्थ में है, हमें उनके अनुभवों का सही उल्लेख मिलता है। वे मनुष्य जिन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी और जिनको उसने महान दायित्व सौंपा था, कभी कभी प्रलोभन में पड़कर पाप कर बैठते थे, जैसे कि आज भी हम प्रयत्न करते हैं, डगमगाते हैं और बहुत बार गलती कर बैठते हैं। उनके जीवन उनकी त्रुटियों और मूर्खताओं के माध्यम से हमें चेतावनी देने और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सामने है। यदि उन्हें त्रुटिहीन प्रस्तुत किया जाता तो हम अपने पापमय स्वभाव के आधार पर अपनी गलतियों और विफलताओं को लेकर हताश हो जाते, लेकिन यह देखते हुए कि अन्य लोगों ने भी हमारी तरह निराशा की स्थिति में संघर्ष किया, जहां वे भी हमारी तरह प्रलोभन में पड़े, लेकिन फिर भी साहस करके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पराक्रमी हुए, तो हम धार्मिकता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जैसे वे,
यद्यपि कभी कभी पछाड़े जाते थे, लेकिन फिर से अपना स्थान पा लेते थे और परमेश्वर द्वारा धन्य ठहराए जाते थे। इसी प्रकार हम भी यीशु की शक्ति में विजयी हो सकते हैं। दूसरी ओर उनके जीवन का उल्लेख हमारे लिए चेतावनी का काम कर सकता है। वह बताता है कि परमेश्वर अपराधी को किसी भी तरह निर्दोष नहीं ठहराएगा। जिन पर उसकी अधिक कृपा दृष्टि है, उन प्रियों के भी पापों को वह देखता है और उनके साथ इस संदर्भ में कम प्रकाश और दायित्व वाले लोगों से अधिक सख्ती से व्यवहार करता है।
याकूब को मिट्टी देने के पश्चात यूसुफस के भाइयों के हृदय फिर डर से भर गए। उनके प्रति उसकी दयालुता के बावजूद सचेतन अपराध बोध ने उन्हें संकोची और अविश्वसनीय बना दिया। हो सकता है कि उसने प्रतिशोध में केवल विलंब किया हो पिता के सम्मान की खातिर, और अब वह उन्हें उनके अपराध का दंड देगा। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उसके सम्मुख आने का दुस्साहस तो नहीं किया, लेकिन एक संदेश भेजा। तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप का क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। इस संदेश से प्रभावित होकर यूसुफ रो पड़ा, और इससे प्रोत्साहित होकर उसके भाई आकर उसके सामने गिर पड़े और बोले, देख, हम तेरे दास हैं। अपने भाइयों के लिए यूसुफ का प्रेम गहरा व निस्वार्थ था, और इस विचार से उसे दुख हुआ कि उसे प्रतिशोध की भावनाओं को संजोए रखने वाला मान रहे थे। उसने कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। यूसुफ का जीवन मसीह के जीवन का उदाहरण है। वो ईर्ष्या ही थी जिसने यूसुफ के भाइयों को उसे बेच डालने के लिए उकसाया। वे उसे स्वयं से अधिक महान बनने से रोकना चाहते थे, और जब उसे मिस्र ले जाया गया, वे इस बात से आनंदित हुए कि यूसुफ के स्वप्न उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पूरे होने की प्रत्येक संभावना को उन्होंने समाप्त कर दिया था। लेकिन उनकी युक्ति को परमेश्वर ने नाकाम कर दिया, ताकि वह उस घटना को घटित कर सके जिसे उन्होंने बाधित करने का षड्यंत्र रचा। इसी प्रकार यहूदी धर्मगुरु और पुरनिये एल्डर मसीह से डाह करते थे, इस डर से कि वो लोगों का ध्यान उन पर से हटाकर स्वयं की ओर आकर्षित करेगा। उन्होंने उसे राजा बनने से रोकने के लिए मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन वही हुआ जो होना था। यूसुफ मिस्र में अपने दासत्व के माध्यम से अपने पिता के परिवार के लिए मसीहा बना, लेकिन फिर भी इस तथ्य से उसके भाइयों का अपराध कम नहीं हुआ। इसी प्रकार मसीह के शत्रुओं द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ा देने से वो मनुष्य जाति का मुक्तिदाता बना, पतित जाति का उद्धारकर्ता व समस्त जगत का राजा। लेकिन उसके हत्यारों का अपराध उतना ही घिनौना था मानो मनुष्य की भलाई और अपनी स्वयं की महिमा के लिए परमेश्वर के शुभ हाथों ने घटनाओं पर नियंत्रण न रखा हो। जैसे यूसुफ को उसी के भाइयों द्वारा अधर्मियों को बेच दिया गया, इसी प्रकार मसीह को उसी के एक शिष्य द्वारा उसके द्वेषपूर्ण शत्रुओं को बेच दिया गया। यूसुफ को उसके सद्गुण के कारण, झूठे आरोप के कारण कारावास में डाल दिया गया, इसी प्रकार मसीह को तिरस्कृत व अस्वीकृत किया गया, क्योंकि उसका धार्मिकता व आत्मत्याग का जीवन पाप के लिए ताड़ना था, और निर्दोष होते हुए भी उसे झूठी साक्षी के कथन के आधार पर दंडित किया गया। और अन्याय और अत्याचार की परिस्थिति में यूसुफ का धैर्य और दीनता, उसकी तत्पर क्षमाशीलता, अपने सौतेले भाइयों के प्रति उसकी शिष्टतापूर्ण उदारता, दुष्ट मनुष्यों के दुराचार और द्वेष के प्रति उद्धारकर्ता की तत्पर सहनशीलता को, और न केवल उसके हत्यारों के प्रति वरन प्रायश्चित करते हुए उन सभी क्षमा प्रार्थियों के प्रति जो उसके पास आते हैं, उसकी क्षमाशीलता को दर्शाता है। यूसुफ अपने पिता से 54 वर्ष अधिक जीवित रहा, और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। उसने अपने लोगों की वृद्धि और समृद्धि को देखा,
और सभी वर्षों के दौरान प्रतिज्ञा के देश में इज़राइल के परमेश्वर द्वारा पुनः स्थापना में उस विश्वास अटल रहा।
जब उसने देखा कि उसका अंत निकट था, उसने अपने परिजनों को अपने पास बुलाया। फिरौन के देश में वो सम्मान प्राप्त था, पर मिस्र उसके लिए उसके प्रवास का स्थान था। उसका अंतिम कृत्य था ये प्रकट करना कि उसका स्थान विशेष इज़राइल के साथ था। उसके अंतिम शब्द थे, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। और उसने इसराइलियों से शपथ ली कि वे उसकी हड्डियों को वहां से अपने साथ कनान देश को ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। इसके बाद की परिश्रम से भरी सदियों के दौरान यूसुफ के मृत्यु पूर्व शब्दों के स्मरण पत्र, उसका ताबूत, शवघार इज़राइल को ये विश्वास दिलाता रहा कि मिस्र में वे केवल अस्थाई निवासी है और उन्हें प्रतिज्ञा के देश पर अपनी आशाएं केंद्रित करने की आज्ञा देता रहा, क्योंकि छुटकारे के समय का आना निश्चित था।